शांति। ये 1979 की मुरली का प्रश्न है और प्रश्न है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, ऐसी दुनिया कब स्थापन होगी? एक धर्म, एक राज्य और एक भाषा, तो ऐसी दुनिया लाने के लिए सबसे पहले शिव बाबा ने, क्योंकि शिव बाबा के सिवाय तो कोई भी कर नहीं सकता है, तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का आधार लिया और उसने हमको समझ दिया, ज्ञान दिया, और ज्ञान के साथ साथ ज्ञान ही नहीं दिया, शास्त्रों का ज्ञान तो बहुत बड़ी बात है, समझ में भी नहीं आता है, लेकिन ये बाबा ने इतना सहज करके दिया जो छोटे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक जो नहीं पढ़े हुए हैं वो भी समझ जाता है, इतना सहज ज्ञान बहुत सहज रीति से दिया। जैसे माँ होती है ना, बच्चा होता है उसको खाना शुरुआत में जो खाना खिलाने की विधि होती है वो एकदम नहीं दे देती है, धीरे धीरे देती है, अपने अपने मुख में चबा चबा के फिर बच्चों को खिलाती है कि वो जिसका जितना वो पाचन कर सके उतना ही देती है। तो बाबा ने भी ऐसे थोपा नहीं, पहले दिन से ऐसा नहीं बोल दिया कि इतनी बड़ी मंजिल है, मंजिल हमको बताई नहीं कि इतनी बड़ी मंजिल है, आपको पूरी जिंदगी जाएगी। बाबा ने बोला कि धीरे 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 राज खोलता गया। शुरुआत में हम जब ज्ञान में आए, हम सभी को पता है, पहले दिन जब हमने ये प्रदर्शनी सुनी तुमको लगा आज ना आज हम लक्ष्मीनारायण बन जाएंगे, आज ना देवता बन जाएंगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे लगा कि मंजिल बहुत लंबी है। तो एक धर्म की स्थापना करने के लिए बाबा ने क्या किया, आदि सनातन देवी देवता धर्म है हमारा, और आदि सनातन देवी देवता धर्म उसमें धर्म भी आता है और राज्य भी आता है, तो बाबा धर्म की स्थापना भी करते हैं और राज्य की स्थापना भी करते हैं। एक राजधानी स्थापन करने का काम और एक धर्म स्थापन करने का काम एक साथ करता है। तो हमने एक वृक्ष दिखा है, बाबा ने हम सभी को दिखाया, एक परमधामी वृक्ष है, कल्प वृक्ष, और वो साकार में भी है, तो उसमें भी जो वृक्ष है वो आत्माओं का झाड़ है और यहाँ साकारी मनुष्य शरीरों का झाड़ है, और इसका बीज है बाबा। जभी भी कल्प वृक्ष है वो जड़ जड़ीभूत हो जाता है तभी बाबा आकर के उसका कलम डालता है, सैपलिंग डालता है, और सैपलिंग डालता है तो हम सभी को अंडरग्राउंड डाल देता है, क्योंकि दुनिया के दुनिया वाले नहीं समझते, दुनिया वाले नहीं, उसको दिखाई नहीं पड़ता है कि ये क्या हो रहा है। तो एक धर्म की स्थापना करते हैं उसमें बाबा ने क्या किया, सबसे पहले समझ दिया, समझ देते देते धीरे धीरे श्रीमत का ज्ञान दिया, श्रीमत क्या है और श्रीमत को कैसे जीवन में लाना है उसका भी हमें ज्ञान दिया। तो श्रीमत तो बहुत सारी है, लेकिन बाबा ने मोड़ लिया, आपने देखा होगा तो कैसी है, उसमें एक दो तीन चार बातें आती है, ज्यादा नहीं, और रोज की मुरली जो है उसमें अगर हमें उस पर अटेंशन रखते हैं एक ही बात पर तो भी हम बहुत जल्दी से उसको ग्रहण करते हैं। लेकिन बाबा ने हमें जब से ही शुरुआत हुई तब से, ज्ञान की शुरुआत हुई तब से बाबा ने एक पाठ पक्का कराया, कौन सा पाठ पक्का कराया, कौन सा पाठ पक्का कराया, आत्मा का पाठ। ओ बाबा ने आज तक भी रोज मुरली में हम देखते, एक भी दिन ऐसा नहीं होता जिस दिन बाबा ने आत्मा की अभ्यास की बात ना कही हो या आत्मा आत्मा समझने की बातें ना कही हो, ऐसी एक भी मुरली नहीं है। तो बाबा ने कहा कि ये ब्राह्मणों की जो जितने भी बाबा के बच्चे बनते हैं वो सभी ब्राह्मण की एक रस अवस्था हो जाएगी। अभी हम यहां बैठे हैं इस यही देखो कि सबकी एक रस अवस्था है क्या, एक रस अवस्था नहीं है। तो हम सभी ब्राह्मणों की एक रस अवस्था कब होंगी, जब ही बाबा हमें जो ज्ञान देते हैं, जो श्रीमद देते हैं, और हम रोज रोज पढ़ते जाते हैं। तो बाबा ने कल कि मुरली में भी कहा कि चिंतन चिंतन करने का अब तक ऐसे समझते होंगे कि बस मुरली की अध्ययन करना है, मुरली की पॉइंट्स निकालनी है, उसका बहुत लंबा चौड़ा चिंतन करना है। लेकिन कल के मुरली में बाबा ने बहुत स्पष्ट किया कि मनन चिंतन करना है तो अपनी जितनी भी सूक्ष्म कमजोरियां कमियां है उसको देखो और उसको निकालने की जो विधि है वह है हमारा मनन चिंतन। अगर वो नहीं करते हैं, वो रोज की मुरली को जितना भी चिंतन करते हैं और सुनाते हैं, तो सुनना और सुनाना वो चिंतन नहीं है। लेकिन हमने सोचा कि आज मेरी एक कमजोरी, इसको निकालने के लिए मुझे ज्ञान की कौन सी पॉइंट अप्लाई करनी है। अगर हम ऐसी विधि अपनाते अपनाते ही हम मतलब कि ये अभ्यास कर सकते हैं। तो आत्मा का पाठ इतना पक्का है कि हम यहाँ दृष्टि का बहुत इंपॉर्टेंस है। हम जब वहां गए थे, जहां जब भी विदेश में गए तो हमने देखा कि विदेशी लोग यहां भी आते हैं तो दृष्टि का बहुत इंपॉर्टेंस है। जितना यहां हमारे जो भी भाई बहन है उसको दृष्टि का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, तो वहां इतना इंपॉर्टेंस क्यों है? तो एक बहन को मैंने पूछा इतना तो, क्या ट्रांजिट? ट्रांजिट को मुझे समझ में नहीं आया, ट्रांजिट क्या है? तो कहते हैं हम जिसको भी देखते हैं उसको आत्मा समझ करके परमात्मा को याद करते हैं। अगर हमें यह अभ्यास नहीं होगा, अगर हम बाबा के कमरे में बैठ के बाबा का ही चित्र देखते होंगे, या तो हमने कई बार देखा है कि जब भी हिस्ट्री हॉल में भी सभी बाबा का जो कास्केट बना हुआ है उसको ही देखते रहते हैं, और एक माता को हमने देखा कि शांति स्तंभ में इतना नस्ती को इतना 10 मिनट ऐसे मतलब कि करके खड़े रहे। तो ये तो बाबा ने कहा मैं तो यहां नहीं रहता, मैं तो स्थूल में नहीं हूं, मैं तो वहां ही हूं, परमधाम में ही मुझे याद करो। तो हम अभी बाबा के कमरे में जाते हैं या शांति स्तंभ में जाते हैं तो हमारा फोकस वहां होता है, और कोई व्यक्ति बीच में भी आ जाता है तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हमें ये अभ्यास नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को देखते हुए अगर हमको बाबा याद आता है, ये अगर हमारा अभ्यास होगा तो क्या होगा, तो हम डिस्टर्ब भी नहीं होंगे। तो जब ब्राह्मणों की स्थिति एकरस क्यों नहीं होती है, क्योंकि हम आत्मा के सिवाय दूसरा बहुत कुछ देख लेते हैं, हमारी यही यात्रा जो है ना निरंतर नहीं चलती है। तो ब्राह्मणों की स्थिति एकरस इसलिए भी नहीं होती है कि सबका हिसाब किताब अपना अपना है, इसलिए भी नहीं होती है। हम समझे इसकी तो संपूर्ण अवस्था होने आई, हमारी क्यों नहीं? तो सबका अपना अपना एक पार्ट होता है, सबका अपनी अपनी एक जिम्मेवारियां होती है, सबका अपना अपना एक हिसाब किताब होता है। तो ब्राह्मणों की स्थिति जब एकरस हो जाएगी तो जितने भी ब्राह्मण है उसकी एकरस स्थिति हो जाएगी क्या? सतयुग में जो है उसकी स्थिति, पहले जन्म में जो आने वाले हैं, दूसरे जन्म में आने वाले हैं, तीसरे में आने वाले हैं और त्रेता में आने वाली, वो सबकी एक स्थिति हो जाएगी क्या? सबकी अपनी अपनी स्थिति के अनुसार होगा। तो ब्राह्मणों की स्थिति जब एक रस माना क्या कि बाबा ने एक हमको एक तीन लोगों के ज्ञान दिया है, उसमें बताया है कि वो जो हमारी बैटरी एक फुल करने का काम कहां करता है, साकार में करता है। लेकिन हमने इतने सारे अभ्यास किया, इतने सारे हमने जन्म लिया है, 63 जन्मों का हिसाब तो हमारे सामने है। अभी इतना सारा जन्मों का हिसाब किताब और एक जन्म में हमें चुकतु करना है तो कैसे करेंगे? इसलिए बाबा ने क्या किया है, सबसे पहले हमारे 63 जन्म जो है ना उसकी तो विधि पहले से ही उसने हमको थोड़ी थोड़ी सजा तो दे ही दी है, थोड़ा चुकतु करने के लिए। उसके बाद ये ब्राह्मण बाबा कहते हैं ना, ब्राह्मण बनते हैं तो एक का 100 गुना जमा भी होता है तो एक का 100 गुना कम भी होता है ना? इसलिए बाबा ने यहां क्या हुआ, लास्ट जन्म में, अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ, लास्ट जन्म में बाबा ने हमको एक परिवार दिया। कैसा परिवार दिया? हिसाब चुकतु करने के लिए, चाहे जो भी मिले हैं कि भाई हिसाब किताब चुकतु करने के लिए बाबा तो यहां नहीं आएगा, लेकिन आपस में जो भी है अगर थोड़ा भी हमको दर्द देता है तो समझो कि वो बहुत हमारे पर कृपा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा हिसाब किताब चुकत होता है। अगर हम भी मतलब कि ऐसा उनके साथ लड़ेंगे ये करेंगे तो ज्ञान का प्रयोग का कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना। हम भी अज्ञान में भी ऐसा करते रहे और यहाँ आने के बाद भी हम ऐसा करते रहे तो हमारा हिसाब किताब तो 100 गुना बन जाएगा। इसलिए बाबा ने क्या कहा कि यहाँ एक परिवार दिया, और ये परिवार ही नहीं लेकिन उसमें एक तो ऐसा ही होगा जो हमको तंग करता ही रहता होगा, चाहे ऑफिसों में हो चाहे कहीं भी हो, तो हम समझते हैं ये हमारा दुश्मन है। दुश्मन है क्या? दुश्मन नहीं है। और ब्राह्मण परिवार में भी आपने देखा होगा कि कोई कोई तो होंगे कि जो आपका हिसाब किताब चुक तो करने में पीछे ही लगे हुए हैं, लेकिन हम समझे कि हमारा हिसाब किताब इससे चुक तो होता है, अगर हमें वो समझ में आएगा तो हमें उसके प्रति कोई भावना अशुद्ध भावना भी नहीं होगी, व्यर्जर भी नहीं होगा। इसलिए बाबा ने बैटरी यहां चालू कर दी है, चालू मतलब सफाई करने के लिए, और यहां ही सफाई कर सकते हैं क्योंकि बाबा ने बोला 100% मदद मैं यहां दूंगा और कहीं भी नहीं दूंगा। तो 100% मदद देने के लिए वो आया है कि मेरा यूज करो, मुझे हर काम में सुबह से रात तक जो भी आपको जहां भी मैं आपके साथ साथ हूं, जहां भी मुझे याद करोगे मैं आपके साथ ही हो जाऊंगा। इसलिए बाबा हमारे साथ साथ है तो बैटरी हम 100% कर सकते हैं। लेकिन कोई कहते मैं 50% करूंगा, मेरे में इतनी ही ताकत है, तो 50% फिर क्या होगा? 50% आएगा सूक्ष्म वतन में क्या, इधर आओ मेरे पास, 50% तो करेगा लेकिन कैसे, थोड़ा हिसाब किताब चुक तो कर देगा, तो 100% करके तो ऊपर भेजेगा, लेकिन जब नीचे आएंगे तब वो 50% कट कर देगा और फिर नीचे भेजेगा। तो उसके हिसाब से तो जितने भी लोग हैं, जितनी भी आत्माएं है, उसकी बैटरी वो चार्ज फुल चार्ज करके भेज ही देता है ऊपर। इसलिए ऊपर तो कैसा है, ऊपर सभी आत्माओं का झाड़ है, वो एकदम प्योर है, पवित्रता है। तो इस ज्ञान मार्ग में भी पवित्रता का आधार है, पवित्रता जितनी जितनी ज्यादा पावन आत्माएं हैं, उस पावन आत्माएं ऊपर से जब उतरती है तो ऐसे ऐसे नहीं उतरती है, उसका नियम है, उसकी मर्यादाएं हैं। तो जिसने जितनी पावन संपूर्ण आत्मा है वो उतरती है, और उतरते उतरते उसे थोड़ी कम, उसे थोड़ी कम, उसे थोड़ी कम, ऐसे त्रेता तक उतरते हैं। और द्वापर युग में जो रजोगुणी आत्मा है वो आती है, और कलयुग में तमो प्रधान आत्मा उतरती है। तो ऐसे उनका क्रम है, बाबा ने जो ऐसे क्रम बनाया है, और इसलिए बाबा फिर नीचे आता है तो बाबा कहते मैं सभी आत्माओं का पिता हूं। लेकिन हमको एक बात और भी याद आती है, जब हम एक स्कूल में पढ़ते थे, तो सेंट जोसेफ स्कूल में मैं पढ़ती थी, तो वहां तो जितने भी टीचर्स होते हैं ना, वो मतलब कि क्रिश्चियन होते हैं और फोर्स करते हैं कि आपको ये करनी है, एक विषय भी होता है, सब्जेक्ट फरजियत होता है, तो वो कहते हैं कि वो आपको करना है उसमें, एक बार चर्च में एक बार आपको जाना है, ये सब कुछ होता था। तो मन तो मानता नहीं था, और वहां है ना यीशु ख्रिस्त की जो भी क्राइस्ट है ना, उसकी बहुत सारी बताते रहते हैं, एक वीक में दो तीन बार तो बताते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता था कि जो कृष्ण जो क्राइस्ट है उसके बचपन दिखाते हैं, और बचपन के बाद वो जो युवा वही दिखाते ही नहीं है, उसके बाद सीधा बहुत बड़ी उम्र दिखाते हैं। तो हमने पूछा कि ये ऐसे जैसे कृष्ण है उसका बाल स्वरूप है, उसका वो भी स्वरूप है, लेकिन इसमें क्यों नहीं है? तो उन्होंने बोला कि ये सब नहीं सोचो, आप जो भी है वो वही सोचो। लेकिन इसका जब हमको यहां मिला था, और यहां कैसे मिला था कि आपको पता हो या नहीं हो, लेकिन एक बहन आई थी यहां, वो अमेरिका में रहती थी, आप थे उस समय, वो रावल ने क्लास कराया था, उसने क्लास कराया था, तो उसने बताया था कि वो बहुत समय से ज्ञान में चलती थी और साइंटिस्ट जैसी थी, लेकिन बाबा के ज्ञान में बिल्कुल ही वो प्रमाण के साथ मतलब समझती थी कि ये भगवान कैसे हो सकते, लेकिन उसको बाबा ने टच कर दिया और ज्ञान में चल पड़ी। तो वहां है ना, तो अमेरिका में रहती थी, और अमेरिका में वो ऐसे ग्रुप में रहती जो मिलिट्री कैंप होता है उसमें रहती थी, और जहां रिसर्च होता रहता था। तो उन्होंने एक बात बताई थी कि ये जो यीशु ख्रिस्त का जो पूरी बात है ना, उसने ऐसी बताई कि वहां बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे धर्म के नाम पर, और उन्होंने बोला कि ऐसा हिंदू धर्म में ऐसा क्या है जो मंत्रों से ठीक कर देते हैं, और वो जो बातें होंगी ना वो उसका शास्त्रों में जरूर होंगी, और क्रिश्चियन धर्म वाले भी स्पर्श करते लोगों का दुख दर्द दूर हो जाता है, वो कैसे होगा, वो भी बातें चली। तो उन लोगों ने क्या किया कि उनका जो धर्म शास्त्र था ना, अभी का नहीं, अभी तो बहुत ही वो मतलब कि मॉडिफाई हो गया, लेकिन वो शुरुआत में जिसने किया है, उन्होंने वहां तक जाकर के उन जिस भाषा में था उस भाषा में उन्होंने ढूंढा, तो उसमें ढूंढ करके उन्होंने पाया कि ये जो है ना वो 23 साल जो है वो नहीं बताया, वो कहां गया, वो बताया था उसमें। और उसमें वो बताया कि जो यीशु ख्रिस्त है ना, उसका जन्म जब हुआ था, थोड़ा बताओ, जन्म जब हुआ था तो क्या है कि वो कोई स्टार बार हुआ नहीं था, लेकिन उनको वहां है ना, तो उसका जन्म हुआ तो यीशु ख्रिस्त अकेला नहीं था, उसको भी दो चार भाई बहन थे, लेकिन वो बहुत छोटा था, बहुत सुंदर था, और वो उसको अंदर से पहले से ही थोड़ा थोड़ा, मतलब कि थोड़ी उम्र हुई तो उसको अंदर से बहुत ही खूब कम बोलना, जैसा वैसा नहीं खाना, ये सब उसको था। और उसके मात पिता है ना, जब भी 16 साल की उम्र हुई तो उसको बोला कि जैसे लोग भी वहां शादी प्रथा नहीं है, तो वो भी एक चॉइस कर ले फ्रेंड, और हम उसकी मतलब उनके साथ हो रहे। लेकिन वो जो उम्र हुई थी ना, उसमें उसका एक फ्रेंड था, उसका नाम था थॉमस नाम था। उन्होंने क्या किया, दोनों ही अच्छी तरह से रहते थे, बोला कि ये तो अभी माँ बाप बहुत फोर्स करते हैं, और आपको पता है कि पहले के जमाने में तो माँ बाप जो कहते थे ना वो करना पड़ता था, इसलिए उनको अंदर से बहुत साक्षात्कार होता था, लाइट का साक्षात्कार होता था। वो लाइट का इतना साक्षात्कार होता था कि उसको लगा कि ये सब हमको नहीं करना है। तो वो 16 साल की उम्र में वो और उनका जो फ्रेंड था वो दोनों ही निकल पड़े, तभी वो ट्रेन ट्रेन सब कुछ नहीं था, चलते चलते सब कुछ चलते चलते उनको लगा अभी हम सेफ नहीं है, तो चलते 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 वो सब सिंधु नदी के किनारे आ गए, और वहां से गया बौद्ध के वहां सब जगह पे जाते जाते वो आए कहां, भारत में आए, और सबसे पहले सोमनाथ में आए। और सोमनाथ में उसी समय जो टाइम था ना, वो ऐसा था कि वो छूत अछूत का बहुत था, तो जो साधु सन्यासी होते हैं ना, वो किसी को टच नहीं करते थे, बहुत ही क्रिया कर्म चलते थे। उसी समय ये जब भी वहां आया तो उनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि शिवलिंग को देखा तो उसको लगा कि ये बराबर ठीक है, तो उसकी निराकार की पूजा करना तो बहुत अच्छा है। तो वो वहां उसको साक्षात्कार भी एक बार हुआ, तो उसको अंदर से मन लग गया, तो साधु सन्यासियों के साथ रहा। लेकिन उन्होंने पूछा कि देखो ये बहुत हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि बहुत मूर्ति पूजा बहुत है, उसको मूर्ति पूजा अच्छी नहीं लगती थी। उसने बोला कि मैं मूर्ति पूजा तो नहीं करूंगा, लेकिन वो जैसे जैसे वो कहते थे देखो तुम है ना तो ऐसा सेवा करना, हम उन लोगों को टच नहीं करते हैं, लेकिन तुम ये जो अछूत है उनकी सेवा करना। उनको बोला ठीक है मैं उनकी सेवा करूंगा, तो उनकी वो सेवा करता था, और बहुत जो वो लोग थे वो ऐसी सेवा करते थे जिसको टच नहीं करते थे। और हम ये भी देखते हैं कि जब भी कोई बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, और ये भी दक्षिण की तरफ जाते हैं, तो वहां बड़ी बड़ी लंबी लाइन लगती है, और जब पूजा होती है तो किसी को देखने नहीं देते, और वहां तो आने का ही बहुत सारी बाउंड्री होती है, वहां जाने नहीं देते हैं अभी आज भी। तो उसी समय तो कितना छूत अछूत होगा। तो उसी समय वो उनके पास रहा, और वहां जो उनकी योग तपस्या थी वो तपस्या सब की है उसने। तपस्या करते करते इतने साल हो गए उसको, और उसमें एक सिद्धियां आ गई, उसको मालूम ही नहीं था लेकिन सिद्धियां आ गई। और फिर उन वो मूर्ति पूजा में नहीं मानते थे, तो उनको वहां साधु से बोला तुम नहीं मानते हैं तो तुम जहां से आए हो चला जा। उसने बोला ठीक है, क्योंकि मैं तो मूर्ति पूजा में नहीं मानता, मैं तो एक कोई मानता ही, मुझे जो साक्षात्कार होता है। तो उनको जब वापिस भेज दिया, तभी वो जो उसके साथ था ना उसको भी मालूम था, और वो भी साथ में चला गया, दोनों साथ में चले गए, दोनों साथ में चले गए। उसके बाद क्या हुआ कि वहां जाने के बाद उसमें सिद्धियां थी, उसको नहीं पता था, लेकिन जो भी उनके पास आते थे, शुरुआत तो कम होती है, तो जो भी वो हाथ लगाता था तो अच्छा हो जाता था, उनको जो भी मिलता था उसकी आंखें अंधे होते थे, मतलब कि स्पर्श करने से बहुत कुछ सिद्धियां। तो एक साल हुआ उसमें बहुत समझ में, लेकिन दो साल हो गया तो लोगों को लगा कि ये जो है ना वो बहुत, उनके पास बहुत लोग आने लगे। तो वहां का एक राजा था, यहूदी राजा, उनको लगा कि ये तो अभी बहुत, लेकिन उनको उनके आगे पीछे जो होते हैं ना, उन्होंने बताया कि देखो अगर आप उसको निकालोगे नहीं तो कल इनका राजी हो जाएगा और आपको फिर बहुत तकलीफ होगी। तो राजा ने कहा कि मैं ऐसा करूंगा कि उनको है ना तो तड़ी पार कर दूंगा, बहुत दूर भेज दूंगा। बोला नहीं नहीं, इसमें इतनी सिद्धियां वापिस करेगा ये, तो फिर क्या उसको क्या करे, उसको मार दिया जाए। तो उन लोगों ने मतलब कि निश्चित कर दिया कि किस दिन उसको मारना है। तो उस दिन उसने शुक्रवार का दिन था, और उनके माता पिता भी थे, सारे राज्य के लोग थे, और वो अकेला नहीं था, उसका शिष्य और भी 25 थे। 25 को लेकर के बहुत दूर 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 गए, कोई उसके सपोर्टर तो बहुत थे लेकिन क्या कर सकता है राजा के आगे। तो वहां गए, वहां बहुत बड़ी पहाड़ी थी, एकदम एकांत में थी, और पहाड़ी में एक पत्थर था, उस पत्थर को ऐसे कर दिया उन्होंने, और पत्थर के बाद क्या किया कि वो लोग ने बहुत बहुत ये करने के बाद ये पत्थर को हटाया, और उसमें उसने 25 सुली, जैसे वो क्रॉस है ना, 25 क्रॉस बनाया था, तो 25 क्रॉस बनाया, और उन्हों को मतलब कि अभी इसको मतलब कि इसके पे चढ़ाएंगे, लेकिन पहले यीशु क्राइस्ट को नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि वो देखे सबका दर्द। तो एक दो तीन उनको चढ़ाते चढ़ाते ही उनका इतनी ताकत तो उनमें नहीं थी, तो एकदम धराशी हो गए, वो नहीं हुआ, लेकिन 25 बार उसका नंबर आया। जब इसको क्रॉस पे चढ़ाया तो आप समझ सकते हो, जो व्यक्ति दूसरे का दुख दूर कर सकता है वो खुद को नहीं, उसमें इतनी ताकत नहीं होंगी क्या? ताकत थी उसमें, लेकिन उसने उसका ताकत का उनको कुछ बताया नहीं, और उसको जब क्रॉस पे चढ़ाया तभी उसने कहा कि भगवान सबको माफ कर दे, ऐसा बोला था ना, है ना, उसको क्रॉस पे चढ़ा दिया। क्रॉस पे चढ़ा दिया तो वो बहुत सारी भीड़ थी ना उसमें, वो उसका मित्र भी था, उसको बोला कल तुम आना, उसको बोला मैं कल कैसे आऊंगा, बोला कल तुम आना, टाइम दे दिया उसको, और फिर इशारे से उसको टाइम दे दिया, तो वो लोग सब चले गए, और पत्थर इतना बड़ा था उसको लगा दिया। जैसे ही वो टाइम वो सब चले गए, और फिर वो दूसरे सुबह में आ गया उनके पास आ गया, अरे पत्थर इतना बड़ा, जो लोगों ने बहुत लोगों ने मिलकर के पत्थर को हटाया था और लगाया था, लेकिन उनको पता पड़ गया ना, उसने अपनी एक शक्ति से उस पत्थर को हटाया थोड़ा सा, और वो अंदर आया, उसने बोला कि उसने कफन वफन फेंक दिया, और उसने बोला कि अभी यहां रहने जैसा नहीं है, अगर इनको हम जिंदा भी कर देंगे तो भी कुछ काम का नहीं है, उनको और यातना बहुत होंगी। तो वो लोग बाहर आए, और फिर उनके वही सिद्धि से उसने फिर से पत्थर को बंद कर दिया। अब दोनों निकल गए, और दोनों निकलते 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 जब भी उनको पता पड़ा, वो सन्यासी साधु तो वो भी तो उनको भी सिद्धियां थी कि अरे रे हमने ऐसा किया, तो उन लोगों को बहुत तकलीफ हुई, इसलिए अभी आएंगे तो हम उसका स्वीकार कर लेंगे। तो वापिस को आने में तो टाइम लगा, लेकिन तीसरे दिन संडे को ये लोग आए, पत्थर हटे ही नहीं, बहुत करने के बाद थोड़ा सा हटा और सब अंदर गए। अभी वो तो कोई इमेज कर ही नहीं सकते हैं कि इतना पत्थर, हम इतने लोग मिलकर के पत्थर हटा रहे हैं, और इसमें से कोई निकल जाए तो ये तो हो ही नहीं, तो उनको लगा ये फरिश्ता बन गया। अभी इस शरीर से तो कोई फरिश्ता बन नहीं सकता है, तो फरिश्ता बन गया। फिर उसकी बातें भी ऐसी हो गई कि फरिश्ता बन गया। और वो जब वापिस आए तो उन्होंने बताया कि हमने आपको बहुत दुख दर्द दिया, अभी आप हमारे साथ रहो। बोला अभी मेरी जो भी सेवा का टाइम पूरा हो गया है, अभी मैं है ना तो जाकर के कोई वृक्ष के नीचे जाकर के मैं तपस्या करूंगा, और तपस्या करने के बाद उसने जब शरीर छोड़ा तभी आपको पता है कश्मीर जो है वहां उनकी आज भी वहां उसकी ये है और क्रॉस का निशान भी है। तो कहने का मतलब कि जो झाड़ है ना उसका फाउंडेशन है ना, और कहीं नहीं है, भारत में ही फाउंडेशन है। जो भी अब्राहम आया, जो भी आया, उसका फाउंडेशन यहां ही है, यहां से ही वो लोग सब बाहर गए हैं। बाबा कहते हैं ना कि वो जो झाड़ के पत्ते हैं बाबा के बच्चे हैं। बाबा कई बार कहता है, क्या कहता है बाबा, ऐसा कहता है कि मेरे जो पत्ते हैं, पत्ते मतलब कि जो आदि सनातन देवी देवता धर्म के पत्ते सेवा करने के लिए बाहर गए हैं, वो वापिस इसमें जुड़ जाएंगे। तो वापिस अभी उसमें मतलब कि आ रहे हैं, हमको लगा ये क्रिश्चियन लोग ये है। अभी एक बहन थी ना स्पेनिश, वो स्पेनिश ही बोलती, उसको हिंदी बिल्कुल नहीं आता था। तो मुझे एक बार बोलती मुझे हनुमान का दर्शन करना है, तो यहाँ हनुमान की मूर्ति मुझे ले जाएंगे। हनुमान, ये तो आपने हनुमान को क्यों, वो भी बड़ी लंबी चौड़ी थी, क्योंकि ना हनुमान बहुत ताकत वाले होते हैं, इसलिए मुझे है ना तो उसका दर्शन भी करना है, इसलिए मुझे ले जाइए। तो मैंने उसको बहुत प्रश्न पूछा कि हनुमान को आप क्यों याद करती है, तो आपको तो यीशु क्रिस्त को याद करना चाहिए, तो क्रिश्चियन हो। बोला नहीं नहीं, तो मुझे ऐसा लगा कि वहां के लोग जो है यहाँ के कैसे हैं, उनको तुरंत ज्ञान समझ में आ जाता है, नहीं आता है क्योंकि वो शाखा ही उपशाखाओं में है, इसलिए उसको ध्यान में नहीं आता है। अभी बाबा को तो ब्राह्मणों को ही एक रस बनाना है, इसलिए बाबा ने कहा कि ब्राह्मणों की स्थिति एक रस हो जाएगी। कब हो जाएगी? जब भी तकलीफ ऐसी आएगी तो एक रस हो ही जाएंगे। दूसरा है एक रस अर्थात क्या, हम सभी एक ही परिवार के हैं, लेकिन अभी ऐसा लगता है किसी को कुछ काम होता है तो कुछ मदद करते हैं, कोई नहीं करते हैं। एक परिवार का अभी भी लोगों को अंदर से उलाहना होती है कि एक परिवार के हैं, लेकिन हमको इतनी मदद नहीं मिलती है। लेकिन ऐसा समय आएगा कि सभी एक जैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि परिस्थितियां जब आती हैं ना तभी एक हो जाते हैं। तो एक रस अर्थात सभी को पता है कि हम एक के ही हैं और एक के डायरेक्शन पर ही चलते हैं। तो समय ऐसा आता जाएगा कि हमको ऐसा महसूस होगा कि हम एक का ही है और एक बाप के बच्चे हैं। लेकिन जो मुस्लिम धर्म के हैं ना वो बाप कभी भी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं मालिक है और हम उनके बंदे हैं, ऐसे मानते हैं। अभी इसलिए बताया कि स्थूल देश के भिन्न भिन्न लोग हैं, वो तो शरीर का देश है लेकिन वो उनकी आत्मा जो है आदि सनातन देवी देवता धर्म की है। तो हर एक की स्थिति एक रस बन जाएगी कब, जब ये बाबा की श्रीमत मिलती है और प्योरिटी है, जितनी जितनी पवित्रता में तो प्रकाश भनिका सब कुछ आ जाता है। तो जितनी जितनी हम आत्मा प्योर बनती जाएगी उतना हमारा नंबर आगे बढ़ता जाएगा। और बाबा को जो राज्य की स्थापना करनी है तो उसको सतयुगी और त्रेतायुगी, बाकी द्वापर युग में भी तो बाबा के बच्चे हैं सब। बाबा ने बोला कि तीन चौथाई तो सुख मैं देता हूं, तीन चौथाई सुख, और हम अभी लास्ट जन्म में यहां जो बैठे उसको कितना दुख हो गया है, कितना दुख है, कुछ दुख नहीं है। अंतिम समय में लोग भले चिल्लाते हैं लेकिन यहां बाबा के जो बच्चे बने हैं तो तीन चौथाई नहीं, तीन चौथाई से भी ज्यादा सुख मिलता है। तो बाबा कहते हैं एक राज्य एक भाषा। एक भाषा की बात जब आती तभी मैं कोई मैंने चिंतन मूल्यों का नहीं किया है, तो एक भाषा की जब बात आती है तभी बाबा ने एक बार कहा था वाइब्रेशन, वाइब्रेशन की भाषा बहुत बहुत बड़ी है। हम एक बार है ना गांधीनगर में गए थे, एक मोर था सबको बहुत मारता था, मोर था मारता था, क्या कोई भी नया आएगा ना जैसे कुत्ता होता है ना सूंघता है ना वैसे मोर है, पहले एक चोंच मार के देखता था। तो हम भी जब गए तो हमको भी बहुत डर लगा कि ये मोर तो मारेगा, तो फिर हमने आवाज लगाया तो हमको लेके गए, लेकिन मोर हमारे पीछे पीछे था, उनके कारण हमको उसने चोंच नहीं लगाई। लेकिन हम जब वहां गए तो हमने देखा कि हमारे साथ एक बहन थी, वो उसको खिलाती थी, एक फूल था, फूल गोभी उसके हाथ में था, लेकिन उसको है ना तो उसको थोड़ा डर था ना तो ऐसे से करती थी। तो मोर जो है मतलब वो कितना वाइब्रेशन को कैच करते हैं। उसने क्या किया, ये खाने के बदले इसको यहां चोंच मारी, ये छोड़ करके यहां चोंच मारी, खाने का छोड़ के, उसको खाने की नहीं पड़ी लेकिन वाइब्रेशन। और वही दादी भोली भी वहां थी और चावल लेके बैठी थी, ऐसे मोर आया धीरे धीरे चावल सब खा लिया है? और दूसरी तीसरी बात है कि उसके जो एक भाई आया ना उसके पीछे ऐसा मोर पड़ा बेचारा, वो अंदर चला गया और उसका बच्चा उसके पीछे पीछे था, तीन चार साल का था, वो दरवाजा खोल के अंदर आया, तभी इसका पिता तो अंदर गया गैलरी में देखता था, उसका बच्चा आ रहा है क्या होगा, और बच्चा है ना वो मोर के साथ उसकी उसकी गर्दन पकड़ता है, उसकी आंखें पकड़ता है, उसकी पूंछ पकड़ता है। 10 मिनट तक हमने ऐसा देखा, अभी आप देखो कि उसको हाथ पकड़ उसका पीछे पकड़ते हैं, उसकी गर्दन पकड़ते हैं, कैसा वाइब्रेशन होगा है? बच्चे को वो लोग चिल्ला रहे हैं मार देंगे लेकिन बच्चे को तो पता ही नहीं है, वो तो इधर करते उधर करते वो पकड़ के ऐसा करते उसका पांव पकड़ते सब पकड़ते। तो वाइब्रेशन बाबा के सतयुग में ही भाषा होगी। बाबा कहते बहुत बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इशारे की भाषा, ऐसा मूवी जैसा इशारा नहीं होगा लेकिन फिर भी ऐसी भाषा होगी जो सतोप्रधान शुद्ध भाषा होंगी। और वो बाबा कहते हैं कि शुद्ध हिंदी भाषा होंगी है ना, जो मतलब बहुत लंबी लंबी उसका अर्थ होता है, ये भाषा होंगी। लेकिन आप समझोगे एक ही परिवार में चार ही लोग होंगे और बहुत बड़ा महल है ना, और सबको अपना अपना पुष्पक है, तो वहां इतनी सारी चीजें हैं, इतना सारा खेलना खुलना सब कुछ है, तो वहां एक दूसरे को इतना लड़ने का टाइम ही नहीं है, इतना कुछ बताने का टाइम ही नहीं है। बाबा कहते जैसे आप सोचोगे वैसा ही होगा, इसलिए वहां भाषा भी कैसी होंगी, भाषा तो बाबा ने कहा देवनागरी भाषा होंगी, लेकिन फिर भी बोलने का बहुत कम होगा, खाने का भी बहुत कम होगा, बहुत कुछ है लेकिन। तो एक बाबा कहते हैं कि एक धर्म एक राज्य एक भाषा, ऐसी दुनिया कब स्थापन होंगी। अभी ये प्रश्न का जवाब मैं पढ़ती हूं, मैंने तो अपना अपना बता दिया। जब सब ब्राह्मणों की स्थिति एकरस हो जाएगी, एकरस अर्थात हम सब एक हैं, एक बाप के बच्चे हैं और बाबा ने स्वमान दिया है हमको कि हम सर्वश्रेष्ठ आत्मा हैं। लेकिन जब स्वमान देते हैं तभी हमको एक भट्टी में क्लास कराया था, तो हम जब संगठन में होते हैं तो हम अपने समझते हैं कि हम ही एक अच्छे हैं पुरुषार्थी, बाकी के लोग कुछ भी नहीं है, मतलब अंदर से ऐसा होता है। और जब भी क्लास से बाहर निकलते हैं थोड़ा एक अंदर से ये होता है कि देखो हम कितना पढ़ के आए, रोज रोज हम इतना पढ़ते, मतलब एक एक थोड़ा सा एक ईगो जैसा होता है। लेकिन उन्होंने बताया कि हम, मैं कहूं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो सामने का जो भी व्यक्ति है वो भी बाबा का बच्चा है, वो भी मास्टर सर्वशक्तिवान ही है, तो हम उनको उसी नजर से देखो, बाबा के जो भी बच्चे हैं उसको अपने स्वमान की नजर से देखो। तो क्या है, हमको ये बाबा के ना स्वमान जहां होता है वहां अभिमान नहीं होता है। और अभिमान कैसा है, कहते हैं ना कि यहां लास्ट जो है ना हमारा, बाबा कहते हैं जो ज्ञानी होते हैं ना, ज्ञानी उसका एक ही शत्रु है अहंकार। सारी चार चार जो है वो तो पास कर देते थे अहंकार, उसको नाम मान शान हर प्रकार का अहंकार जब आता है तो व्यक्ति गिर जाता है। तो बाबा ने कहा इस सबसे बचने के लिए आत्मा का पाठ बहुत पक्का कराते हैं। फिर कहा है कि सर्वश्रेष्ठ आत्मा मीन हम, मैं सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूं, बाबा का बच्चा बना हूं, तो वो सामने वाली भी है। फिर बोला तो ये बल स्थूल देश भिन्न भिन्न है, इस शरीर का देश है, लेकिन आत्माओं का देश तो एक ही है। अगर वो हमको हर हमेशा याद रहता है, तो हर हमेशा हमको याद रहता है, तो हम आत्मिक स्थिति से देखेंगे। हर एक स्थिति एक रस बन जाए तो बहुत जल्दी जल्दी एक राज्य एक भाषा ऐसी दुनिया स्थापन हो जाएगी। लेकिन ये भी बताया बाबा ने, एक संकल्प दिया था कि जब से ब्राह्मण बने हैं तो यही संकल्प धारण किया है कि हमारा ऐसा राज्य आए और ऐसा राज्य करके ही छोड़ेंगे। ये हमें प्रतिज्ञा अगर होंगी तो हम सभी धारणाओं में, सभी प्योरिटी में और बाबा को मदद करने में आगे आ जाएंगे। ओम शांति।